From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the September 2014 General Women's Meeting of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with featured speakers from the First Presidency and the General Women's Organizations of the Church. Music for this meeting will be by a combined Primary Young Women Relief Society choir from stakes located in the Magna, Taylorsville, and Salt Lake Hunter areas. Women, young women, and girls 8 years of age and above are gathered together throughout the world to receive counsel and instruction from church leaders. Sister Rosemary M. Wixom, Primary General President, will conduct this meeting.
Sisters,
बहनों, हम आपको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का महाजौन मेलाओं के सभा में. हम इस मंच पर खड़े हुए हैं जहां कभी कहीं भी तुम हो. हम दुनिया भर के लड़कियां, महान महिला और महिलाएं जो को साथ इस सभा में देख रहे हैं और आशा करते हैं कि तुम सब हमारे प्यार को महसूस कर सकते हो. प्रधान मॉनसन जो इस सम्मेलन के नेतृत्व करता है ने कहा कि मैं संचालन करूं. मेरा नाम बहन रोजमेरी एम विक्सन है. हम आभारी हैं कि प्रधान मॉनसन और उनके सलाहकार प्रेसिडेंट हायरिंग और प्रधान उगडोफ आशम हमारे साथ हैं. हम एल्डर जेफरी आर हॉलैंड और डी टॉड क्रिस्टोफरसन जो 12 के, एल्डर क्रिस्टोफर गोल्डन जो 70 के हैं और बिशप गैरी ई स्टीवेंसन जो गिरजाघर के अध्यक्षता बिशप है के संयुक्त होने के लिए आभारी हैं. हम इन भाइयों को प्रेम करते हैं और उनका समर्थन करते हैं और उनसे प्राप्त मदद के लिए आभारी हैं. मंच पर सहायक संस्था महिला, जवान महिलाएं और प्राथमिक महाधिक्षकता भी बैठे हुए हैं. हम सहायक संस्था, प्राथमिक और जवान महिलाओं महाबोध के सदस्यों को और जवान महिलाओं महाबोध के सदस्यों का स्वागत करते हैं जो हमारे साथ पहली बार दुनिया के इर्द गिर्द से शामिल हुए हैं. हमें इस महान कार्य के सेवा को साथ करने के अवसर के लिए आशीर्वाद प्राप्त हुआ है. आज रात की संगीत प्राथमिक लड़कियां, जवान महिलाएं और सहायक संस्था की बहन द्वारा प्रदान की दिया जाएगा जो मेगना, सॉल्ट लेक हंटर और यूटा टेलर्सविल स्थान की है. एरन पाइक टोल के निर्देशन में लिंडा मागेस के साथ ओगन पर गायक मंडली इस सभा की शुरुआत ऑन दिस डे ऑफ जॉय एंड ग्लैडनेस को गाकर करेंगे. उसके बाद प्रार्थना डोरा मेकलबा द्वारा दिया जाएगा दक्षिण अफ्रीका की जवान महिलाओं महाबोर्ड की सदस्य.
Our Father,
हे हमारे पिता जो तू जो स्वर्ग में है, हम बहुत आभारी हैं हम आपके आगे आ सके. हम आभारी हैं कि हमें इस मौका मिला कि हम आकर आपके बारे में और जान सके. हम आभारी हैं इस महान स्थान के लिए. हम आभारी हैं सभी बहनें जो इस कार्य को सुन रहे हैं. हम उनसे प्रेम करते हैं. हम आभारी हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के लिए. हम आभारी हैं हमारे जनरल वुमेन लीडर्स के लिए. हम आभारी हैं अपने भविष्यवक्ता के लिए. हम ये मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपके सहायता उन सब के साथ रहे. इस समय पिता हम आपसे खास करके आशीष मांगते हैं कि आपकी आशीष हम सब के ऊपर रहे, कि हम अच्छा से सुन सके जो कुछ आज हमें सिखाया जाएगा. हम आपसे प्रेम करते हैं. ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से. आमीन.
We will now view a musical number.
अब हम कोरिया के प्राथमिक दल के बच्चों को देखेंगे. बहन को के निर्देशन में जो गाएंगे I love to see the temple. उनके पास सहायक संस्था महाप्रधान की बहन लिंडा के बर्टन बोलेगी. बहन बर्टन के टिप्पणियों के बाद गायक मंडली हमें आई नो दैट माई सेवियर लव्स मी और आई नो दैट माई रिडीमर लिव्स को सुनेंगे. बहन जीन ए स्टीवंस प्राथमिक महाअध्यक्षता की प्रथम सलाहकार फिर हमसे बातें करेंगे.
Kamsamnida, chahesnida, sarangheo. When our youngest daughter returned home after her first day of school,
जब हमारी सबसे छोटी पुत्री अपने स्कूल से पहले दिन से वापस घर आई, मैंने पूछा कैसा था स्कूल. उसने जवाब दिया बहुत अच्छा था. دوسرے صبح پھر بھی جب میں نے اس کے اسکول جانے کے لیے جگایا, اس نے اپنے ہاتھ لپیٹ کر اور کہا, میں اسکول پڑھ چکی ہوں. شبسات روپ سے میں نے اسے تیار نہیں کیا تھا یا سمجھایا تھا کہ اسکول صرف ایک بار جایا نہیں جاتا ہے, پرنتو ان کو اپیچت ہے کہ اسکول کئی سالوں سے ہفتے کے پانچوں دن تک جایا جاتا ہے. جب ہم تیار رہنے کی مول کو وچار کرتے, میرے ساتھ اس درشیہ کو سوچو. تم مندر کے سیلیسٹیل کمرے میں بیٹھے ہو اور ایک دلہا اور دلہن کو شانتی کے ساتھ آتے اور جاتے ہوئے دیکھتے ہو, جب وہ پورے سمے اور انت جیون تک کے لیے سیدھا کاٹنے کی انتظار کرتے ہیں. ایک دلہن سیلیسٹیل کمرے میں آتی ہے اپنے دلہا کے ہاتھوں کو لے کر. وہ شاندار پرنتو سندر مندر کے کپڑے پہنے ہوئے اور دھیرے شانتی سے اپنے چہرے پر دیا کے مسکان لیے آتی ہے. وہ اچھی سے تیار ہی پر وچلت نہیں, وہ بیٹھ جاتی ہے, ارد گرد دیکھتی ہے اور پھر ترنت احساس سے بھر جاتی ہے. ایسا لگا کہ اس کی آنسو نکلے, کیونکہ اس کو اندر اور سامان پتا تھا دونوں کے لیے. جہاں وہی تھی وہ جو پوتر دھارمکتا کا وہ انتظار کر رہی تھی. ہماری سندر جوان ناتی نے ابھی جلد ہی میرے لیے تکیے پر ایک پتر لکھ کر چھوڑا تھا, جس میں لکھا تھا, ایک چیز جو میں مندر میں حال ہی محسوس کرتا ہوں وہ ہے شانتی, پریم کرنے والی آتما جو وہاں پر رہتا ہے. لوگ مندر میں پریرنا پانے کے لیے جا سکتے ہیں. وہ صحیح ہے, ہم مندر میں پریرنا اور پرتیکارن پا سکتے ہیں اور جیون کے ویرودھیوں کو جھیلنے کی شکتی بھی. ایلڈر رسل ایم نیلسن نے سکھلایا, جبکہ مندروں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے, لوگوں کو بھی مندر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. جبکہ میں مومن دھرم شاست کے نیتا مورنائی کے وشے میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں, مجھے مورمن کے ایک مہان جیت یاد آتی ہے جہاں اس نے نیفائز کو سودھانی سے تیار کیا تھا دورانے لیمنائز سینا سے جیتنے میں. اس نے اپنے لوگوں کو اتنا اچھی طرح سے تیار کیا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں, لیکن سنو, آشچریے میں تھے نیفائز کو اس ڈھنگ سے تیار دیکھ کر جس کی جانکاری پہلے سے نہیں تھی. ہم کس طرح اس پوتر مندروں کے آشیرواد کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ پربھو نے سکھلایا, آؤ دوبارہ, میں تمہیں سبھی چیزوں کے ادھارن دوں گا. دھرم شاست کے ایک ادھارن کو دیکھو جو ہمیں اچھی طرح سے مدد کرے گا. شترو کے لیے مورنائی کو تیاری کرنے میں لگاتار اور وشواسی پریشرم کرنا پڑا, اور یہی ادھارن کی ضرورت ہے. میتھیو چیپٹر 25 میں ہم پڑھتے ہیں, سور کا راگی ان 10 کنواریوں کے سمان ہونا جو اپنی مشالیں لے کر دلہے سے بھیٹ کرنے کو نکلے. ان میں 5 مورخ اور 5 سمجھدار تھی. جو ان میں سمجھدار تھی مشالوں کے ساتھ اپنی کپیاں میں تیل بھی بھر لیے. جب دلہے کو آنے میں دیر ہوئی تو وہ سبھاگنے لگی اور سو گئے. آدھی رات کو دھوم مچی, دیکھو دلہا آ رہا ہے, اسے بھیٹ کرنے کے لیے چلو. تب وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی مشالیں ٹھیک کرنے لگی, اور مورخوں نے سمجھداروں سے کہا, اپنے تیل میں سے کچھ ہمیں بھی دو, کیونکہ ہماری مشالے بھوجی رہا نہیں ہے. پرنتو سمجھداروں نے اتر دیا, کھڑچت یا ہمارے اور تمہارے لیے پورا نہیں, بھلا تو یہ ہے کہ تم تیل بیچنے والے کے پاس جا کر اپنے لیے مول لے لو. اس کے بعد وہ دوسرے کنواریوں بھی آ کر کہنے لگی, ہے سوامی, ہمارے لیے دوار کھولیے. اس نے اتر دیا, میں تم سے سچ کہتا ہوں, میں تمہیں نہیں جانتا. जब हम उदाहरण को मंदिर के तैयारी की कहानी की तरह बतला रहे हैं, अंतिम दिन भविष्यवक्ता के शब्दों को सोचो जिसने सिखलाया है, धार्मिकता के तैयारी के तेल को किसी से बांटा नहीं जाता सकता। प्रधान स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल ने मदद किया ये समझाने में कि क्यों वे पांच समझदार जवान महिलाओं ने अपने मशाल में से तेल को उन मूर्ख के साथ क्यों नहीं बांटा था जब उसने कहा था, प्रभु भोज सभाओं में हमेशा भाग लेने से हमारे मशाल में तेल मिलता रहता है धीर और हमेशा कई सालों तक। उपवास, परिवार प्रार्थना, घरेलू शिक्षण हमारे शारीरिक इच्छाओं को बस में रखता है। क्या तुम तैयारी के उदाहरण को देख सकते हैं, धीरे और हमेशा जो हमें मदद कर सकता है जब हम सोचते हैं कि किस तरह हम अपने तैयारी को और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं पवित्र सिद्धांतों को अपने लिए और दूसरों के लिए प्राप्त करने में। एल्डर रिचर्ड जी स्कॉट से हम सीखते हैं कि व्यक्तिगत लायक रहना मंदिर के आशीर्वादों के खुशी को प्राप्त करने के एक लिए खास जरूरत है। मैं अतल के शब्द को पसंद करती हूँ। अतल के मतलब थामना, हमेशा और विश्वास से रहना। कितना महान मतलब है लायक रहने के सिद्धांत को। हमें बाइबल डिक्शनरी में याद दिलाया जाता है कि सिर्फ घर ही मंदिर के पवित्र के बराबर हो सकता है। क्या हमारे घर या मकान इस तरह के हैं? एक प्रिय जवान महिला हमारे वोट की अभी जल्द ही हमारे घर आए, ये जानते हुए कि उसके भाई भी जल्द ही मिशन से वापस आए हैं। मैंने उससे पूछा कि कैसे लगता है उसे वापस घर लौटने पर। उसने कहा कि बहुत अच्छा, परंतु वो कभी कभी संगीत को धीरे करने को बतलाता है। उसने कहा, और वह बुरी संगीत भी नहीं था। यह हमारे लिए अच्छा होगा कि हम अभी अपने आप को हमेशा जांच ले, ताकि हम जाने कि हमारे घरों में आत्मा को महसूस करने की तैयारी का स्थान है। जब हम अपने घरों को उस तरह से तैयार करते हैं जहां आत्मा की स्वागत किया जाता है, हम तैयारी रहेंगे और ज्यादा संतुष्ट महसूस करने में जब प्रभु के घर में जाएगा। क्योंकि हम मंदिर में अनंत आशीर्वाद को प्राप्त करने में पूरी तरह से सहमत आते हैं, हम ये सुनकर हमें आश्चर्य नहीं होना है कि उन आशीर्वादों को होने के लिए ज्यादा स्थिर की जरूरत। एल्डर नेल्सन ने सिखलाया, क्योंकि मंदिर प्रभु का घर है, उसके द्वारा स्थिर को बनाया जाता है। उसके अतिथि की तरह हम जाते हैं। मंदिर के सिफारिश को रखना परमेश्वर और उसके भविष्य वक्ताओं पर आज्ञाकारी रहने का एक अनमोल अवसर और एक शारीरिक चिन्ह है। उसी तरह जो सेलेस्टियल राज्य के लिए सफल होना चाहते हैं, उन्हें जीवन में ज्यादा आज्ञाकारी रहने का स्थिर की जरूरत है, जो मिलता है हर दिन और बूंद बूंद से आज्ञाकारी कार्य को करने से। जब हम हमेशा और मेहनत से तेल डालते हैं बूंद बूंद अपने धार्मिक मिसाल में, ये छोटे और सरल चीजों को करने से हम अपने मशालों को छोटे और जलते हुए रख सकते हैं आश्चर्य के तैयारी के साथ। मेरे पति जो स्टेट प्रधान है, अभी जल्द ही बतलाए कि वो लगभग सभी समय बतला सकता है कि कब कौन मंदिर जाने के लिए लायक से तैयार है, क्योंकि खुशी और आश्चर्य के एहसास को लाते हैं जो कमरे में रहने वाले महसूस कर सकते हैं। कर्टलैंड मंदिर के समर्पण प्रार्थना में भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने प्रभु से पूछा, कोई भी जो प्रभु के घर में आएगा वो उसे शक्ति को महसूस करेगा कि वो उसे उसमें बंधेगा और पवित्र आत्मा को पूरी तरह से प्राप्त करेगा। यह हमारी प्रार्थना है कि हमारे लिए मंदिर को जाना एक बाय से ज्यादा जाने का कार्य होगा। जब हम ऐसा करेंगे, मैं जानती हूँ कि हम पवित्र आत्मा और प्रभु की शक्ति को अपने घरों और व्यक्तिगत जीवन में वादा भरे आशीर्वाद से प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
Dear sisters, I greet you with so much love. Right now,
प्यारे बहनों, मैं आप सब के स्वागत बड़े प्रेम से करती हूँ. इस समय आप दुनिया में कहीं भी हो, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने लिए प्रभु के प्रेम को महसूस करें और इस सुंदर गायक मंडली के संदेश को आत्मा द्वारा बयान करें. मैं अपने बयान अब उनके साथ कहूँगी. आई नो दैट माय रिडीमर लिव्स. मैं जानती हूँ कि मेरे मुक्तिदाता जीवित है. आज रात हम परमेश्वर की वचनबद्ध पुत्रियों की पुत्रियों की तरह इकट्ठा हुए हैं. हमारे उम्र, परिस्थितियों और विशेष चरित्र हमें अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो उनके हैं. हमने एक वचन लिया है कि हम हमेशा उनके पुत्र को याद रखेंगे. उस एक वचन की शक्ति मेरे दिल को भाग गया 3 हफ्ते पहले, जब मैं एक बपतिस्मा के सभा में थी. वहां मेरे सामने 8 सुंदर बच्चे आशा के साथ बैठे थे, मगर जब मैंने उनके उज्जवल चेहरों में देखा, मुझे सिर्फ एक बच्चों के दल नहीं दिखा, मैंने उन्हें वैसा देखा जैसे प्रभु देखता एक एक करके. मैंने एमा, सोफी, इयन, लोगन, एडन, विलियम, सोफी, माइका को देखा. हर एक बपतिस्मा का वचन एक एक करके बना है. हर एक सफेद कपड़े पहने हुए है. वो वहां तैयार और उत्सुक बैठे थे. अपने 8 विषय दिलों की इच्छा को साथ लेकर वो परमेश्वर के साथ अपने पहला वचन बनाया. याद कीजिए और अपने मन में सोचिए अपने बपतिस्मा के दिन के बारे में. चाहे तुम्हें ज्यादा बात याद हो या ना, कोशिश करो उस वचन को महत्वपूर्ण का अब महसूस करने के लिए जो तुमने खुद बनाया था. उनकी पुत्री बनकर एक वचाबंद पुत्री जो उनके पुत्र के नाम से पुकारा जाना पसंद करती है और वादा करती है कि उनकी तरह जाएगी और उनके आज्ञाओं का पालन करेगी. परमेश्वर के साथ वचन हमें यह जानने में मदद करती है कि हम वास्तव में कौन हैं. वो हमें उनके साथ एक निजी रूप से जोड़ देती है, जहां हम उनके नजरों में अपने महत्व को पता है और उनके राज्य में अपने जगह. एक तरह से तुम पूरी तरह से नहीं समझते कि वो हमें जानता और प्रेम करता है. उनकी इच्छा है कि हम वो मार्ग चुने जिससे उनके पास घर लौट सके. जितना आवश्यक और महत्वपूर्ण बपतिस्मा का वचन है, ये तो बस शुरुआत है. वो फाटक जो हमें अनंत जीवन के मार्ग पर लेकर जाता है. जैसे एल्डर डेविड ए बेडना हमें याद दिलाता है, जब हम बपतिस्मा का पानी में खड़े होते हैं, हम मंदिर की ओर देखते हैं. सिर्फ वचन बनाने में नहीं, पर विश्वास के साथ वचन को निभाने में हम तैयार करते हैं अनंत जीवन पाने की. ये हमारी आशा, हमारे लक्ष्य और हमारी खुशी है. मैं वचन की शक्ति का जसमदीद गवाह हूँ, क्योंकि मैंने अपने धार्मिक माता पिता को देखा जो सुसमाचार से प्रेम करते और उसे जीते थे. अपने प्यारी माँ में मेरे सौभाग्य था ये देखना कि वो परमेश्वर की वचनबंद पुत्री की तरह दैनिक निर्णय लेती थी. उनका चुनाव में उनकी प्राथमिकता दिखता था और उसे वो यीशु मसीह की सच्ची चेला थी. मैंने वो शांति, शक्ति और सुरक्षा देखी है जो उसने जीवन में आए जब वो अपने यात्रा में पवित्र वचनों को बनाती और निभाती थी. उसके इस धरती के जीवन में उद्धारकर्ता के प्राप्त प्रेम और इच्छा दिखता था उनके जैसा होने का. मैं उसके उदाहरण अनुसार जीना चाहती हूँ. मेरे माता पिता का एक साथ का जीवन एक अजीब तरीके से शुरू हुआ. वो 1936 था. वो गंभीरता पूर्वक डेट कर रहे थे और वो शादी करना चाहता था, जब मेरे पिता को पत्र मिला कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका में पूरे समय का प्रचार करना पड़ेगा. पत्र में लिखा था कि अगर वो योग्य है और सेवा करना चाहता है, उसने अपने बिशप से संपर्क करना चाहिए. तुम जल्द जान लोगे कि प्रचारक नियुक्ति करने का तरीका उन दिनों में बिल्कुल अलग था. पिताजी ने वो पत्र अपने प्रेमिका हेलन को दिखलाया और बिना कोई सवाल के उन्होंने सेवा करना चुना. जाने से पहले दो हफ्ते तक वो हर दिन दोपहर के भोज के लिए मेमोरी ग्रोव जो सॉल्ट लेक शहर के करीब में पर मिलते थे। एक दिन भोजन करते समय पहले से उपवास और प्रार्थना करने के बाद माँ ने अपने प्रिय से कहा कि अगर वो चाहे वो उनसे शादी कर सकते हैं उसे जाने से पहले। गिरजाघर के शुरुआत के दिनों में कभी कभी पुरुषों को प्रचार सेवा के लिए बुलाया जाता था और वो पत्नियों और परिवार को घर पर छोड़ जाते थे। वैसा ही हुआ और मेरे माँ और पिताजी के साथ उनके पुरोहित नेताओं की स्वीकृति के द्वारा उन्होंने शादी करने की निर्णय लिया मिशन पर जाने से पहले। एल्डर डेविड और मैके के द्वारा उनके शादी का शुरुआत हुआ। वहाँ कोई टेलीविजन तस्वीर सुंदर शादी का जोड़ा फूल और स्वागत समारोह नहीं था इस अवसर को मनाने का। उनका ध्यान सिर्फ मंदिर और उनके वचनों पर था। उनके लिए वचन ही सब कुछ था। शादी के सिर्फ 6 दिन बाद मेरे पिताजी दक्षिण अफ्रीका चले गए, मगर उनकी शादी उनके गहरे प्रेम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उनके लिए वो प्रभु से भी प्रेम करते थे और उनकी सेवा करने की इच्छा रखते थे। जो पवित्र मंदिर के वचन उन्होंने बनाए थे उन्हें शक्ति और बल दिया ताकि वो 2 साल की जुदाई सह सके। वो जीवन के लक्ष्य और वादा किए आशीर्वादों को अनंत नजरिए से देखते थे जो वचन की और विश्वासी लोगों को मिलता है। ये सब आशीर्वादें उनके थोड़े समय के बलिदान और अलग होने से कई ज्यादा थी। जबकि ऐसा शादीशुदा जीवन शुरू करना आसान तरीका नहीं था, इससे साबित हुआ कि ये सही तरीका था एक अनंत परिवार शुरू करने के लिए। जैसे जैसे बच्चे आते गए हम जान गए कि हमारे माता पिता के लिए क्या महत्वपूर्ण था। वो था उनका प्रभु के लिए प्रेम और उनका लगन वचन को निभाने में। उनके जीवन के उदाहरण बहन लिंडा के बेटन के शब्दों से जाहिर होता है। वर्तमान ये भविष्य में एक घर को मजबूत करने का सबसे बेहतर तरीका है वचनों को निभाने। उसके मुसीबत और कठिनाई का समय अभी खत्म नहीं हुआ था। पिताजी के मिशन के लौटने के 3 साल बाद विश्व युद्ध 2 चल रहा था और कई अन्य लोगों की तरह वे भी सेना में चले गए। वो 4 और साल तक घर से दूर रहे। ये कठिन समय था मेरे माता पिता के लिए अलग रहने को लेकर, मगर मेरी माँ के लिए वो अकेलापन चिंता और भय के दिनों में अभी आत्मा के फुसफुसातों से उसे अनंत वादों सहानुभूति और शांति मिलती थी। मुसीबतों के समय पर उनके चुनौतियों के बावजूद मेरी माँ ने आशीर्वाद भरा जीवन जिया, खुशहाली आनंद प्रेम और सेवा के। उद्धारकर्ता के प्रति प्रेम उसके जीवन बिताने के तरीके से देखता था। उसका स्वर से बढ़िया समर्थ था और एक उपहार और प्रेम करने की क्षमता और हर एक को आशीर्वाद देने की क्षमता थी। परमेश्वर में उसका विश्वास और उनके वादों में आशा उसके एक पसंदीदा धर्मशास्त्र में दिखता था। जो बातें आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित में नहीं चढ़ी वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार की है। उसके जीवन के हर एक समय में माँ को मजबूती और आशीर्वाद मिली उसके प्रभु के प्रति प्रेम के द्वारा और वचनों को विश्वास से बनाने और निभाने के कारण। कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी कहानी उनकी कहानी से अलग हो, मगर उनके जीवन के सिद्धांत हम सब पर आधारित है। जब परमेश्वर की पुत्रियां मंदिर पर गौर करती है और अपने पवित्र वचनों पर, परमेश्वर उन्हें निजी और शक्तिशाली तरीकों से आशीर्वाद भेजता है। जैसे मेरे माँ का अनुभव मेरे लिए था, तुम्हारे चुनाव विश्वास करने और वचनों को निभाने का तुम्हारे वंशज जो के लिए विश्वास का विरासत बनेगा। इसीलिए प्यारे बहनों, हम कैसे मंदिर के वचनों के शक्ति और आशीर्वादों को प्राप्त कर सकते हैं? हम अभी क्या कर सकते हैं उन आशीर्वादों के तैयारी के लिए? अपने यात्रियों में मैंने जाना है कि बहनें हर उम्र की सभी परिस्थितियों में होती है जिनका जीवन इन सवालों के जवाब देती है. मैं मेरी से मिली उसके 8वें जन्मदिन के थोड़े दिन बाद. कई अन्य लोगों की तरह वो उत्सुक है परिवार इतिहास करने के लिए और उसने मंदिर कार्य के लिए लगभग 1000 नाम दे दिए हैं. मेरी अब अपने आप को मंदिर जाने के लिए तैयार कर रही है जब वो 12 की हो जाएगी. ब्रियाना 13 वर्ष की है और उसने एल्डर नील एंडरसन के मंदिर जाने की चुनौती को लिया है. उसने कई नाम तैयार किया है मंदिर कार्य के लिए और खुद से के साथ उसने अपने परिवार और दोस्तों को शामिल किया बपतिस्मा करने के लिए. भले ही अनफीसा एक व्यस्त जवान बालिक है जो काम कर रही है और यूनिवर्सिटी के अंतिम कक्षों में जा रही है, वो फिर भी समय निकालती है हर सप्ते मंदिर जाने के लिए. वो प्रभु के घर में सेवा प्रदान करते समय प्रतिकारण और शांति ढूंढती है. काटिया यूक्रेन की एक प्रिय बहने जिसने मंदिर के प्रति गहरा प्रेम है. कीव में मंदिर बनने से पहले वो और उन अन्य लोग उसके सक्षा में बस द्वारा 36 घंटे बलिदान करके सफर किया ताकि वो साल में एक बार जेमनी का मंदिर जा सके. कातनिया ने मुझे बतलाया जब हम मंदिर पहुंचे हम तैयार थे वो सब हासिल करने के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए रखा था. अगर हमें वो सब आशीर्वादे पाने हैं तो परमेश्वर हमें बहुत बहुत आशीष देता है. हमारा धरती का मार्ग मंदिर तक जाना चाहिए. मंदिरे परमेश्वर के प्रेम को दिखलाता है. वो हम सबको आमंत्रित करता है पास आने के लिए उनसे सीखने उनके प्रेम को महसूस करने उनके साथ अनंत जीवन जीने के अवस्था पुरोहित के धर्म विधियों को पाने के लिए. और वो तुम्हारे लिए भी मायने रखता है क्योंकि जब हम उनके पवित्र घर में जाते हैं हम उनके शक्ति लेकर जाएंगे और उनका नाम अपने ऊपर लेंगे और उनकी महिमा चारों ओर रहे और उनके फरिश्ते हमारे रखने वाले रहेंगे. मैं अपनी गवाही आपके साथ बांटती हूँ कि हमारे स्वर्ग के पिता जीवित है. उनके प्रिय पुत्र यीशु मसीह ही है के द्वारा जो कि हर आशा हर वादा हर मंदिर का हर आशीर्वाद पूरा होता है. मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पास विश्वास हो उन पर और उनके वचनों पर भरोसा करने के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन.
We will now have
हम एक खास वीडियो प्रसारण को देखेंगे जिसमें दुनिया भर की महिलाओं और लड़कियां मंदिर की गवाही को बयान करेंगे और आशीर्वादों और शक्ति को जो उनके जीवन में प्राप्त हुआ है. उस प्रसारण के बाद हम जवान महिला महाअध्यक्षकता के दूसरे सलाहकार नील एफ मैरिवेल को सुनेंगे. ये मंदिर की सिफारिश मेरे जीवन में एक महान आशीर्वाद है. जितना ज्यादा हम मंदिर जाते हैं उतना ही हम सीखेंगे. प्रभु हमें और भी ज्यादा सच्चाई को बयान करेगा. मैं और मेरे पति 5 साल पहले हांगकांग मंदिर में साथ बंधे थे. जो चीजें हम मंदिर में सीखते हैं वे हमारे जीवन का बचाव बन जाता है. हम जवान महिलाओं ने इस साल हफ्ते में एक बार मंदिर जाने के लिए लक्ष्य बनाया है. हर हफ्ते के कार्य शनिवार को 1 बजे सुबह शुरू होता है जब हम मंदिर के लिए निकलते हैं और ब्यूनस आयर्स को 6 बजे सुबह पहुंच जाते हैं. हम पूरे दिन 6 बजे से शाम तक कार्य को करते हैं. हम मंदिर के शांति अपने साथ रोज के गतिविधि में शामिल करते हैं. मेरे रोज के जीवन में मैं हमेशा बहुत ही व्यस्त महसूस करती हूँ परंतु जब मैं मंदिर को आती हूँ मैं सुख और शांति को महसूस करती हूँ. मंदिर मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि जब पहले बार मैं वहां गई थी मैंने पवित्र आत्मा को महसूस किया था. मंदिर मेरे लिए पहले भेंट किए मैंने हर महीने तैयारी किया और पैसे बचाए. मैंने अपने आप को आत्मिक रूप से भी तैयार किया. जब मैं मंदिर गई थी मैं जानती थी कि यह प्रभु का घर है. मैं गवाही देती हूँ कि मंदिर खुशियों से स्रोत है. मैं ये जानती हूँ मंदिर शानदार था. मैं जाना ही नहीं कि मंदिर धरती पर थी. मुझे लगा मैं स्वर्ग में हूँ. जब हम वहाँ पर थे मुझे लगा कि मैं अपने मुसीबतों से बहुत दूर हूँ. जब हम बंधे वाले कमरे में गए मैं अपने माता पिता को देखा और हम साथ घुटने पर हुए. वह मेरे पूरे जीवन भर का सबसे अच्छा एहसास था. हम अनंत जीवन तक के लिए साथ बंधे थे. जब मैं 10 साल की थी ये बहुत ही मुश्किल का समय थे. परंतु मैं पहली बार प्रचारकों से मंदिर में परिवारों के साथ बांधने के बारे में सीखा शुरू किया. मैं मंदिर जरूर जाना चाहती थी. पहली बार मंदिर जाना बहुत ही आश्चर्य था. मैंने पहली बार आत्मा की शक्ति को महसूस किया था. मैं अपनी माँ का नाम ले गई थी और लगा कि वह नीचे मुझे देखकर मुस्कुरा रही है. मंदिर मदद करते हैं परिवारों को साथ रखने में और जब हम साथ है हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं एक दूसरे को आत्मिक रूप से मदद करते हुए. जबकि मैं मंदिर जा चुकी हूँ मुझे जरूरत के समय आश्वासन प्राप्त हुआ है और निराशा के समय पर भी मैंने अपने बच्चों के लिए देखभाल करने वाले को संगति किया. किसी भी तरह का तुम्हारा स्थिति हो कोई भी मुसीबत हो कोई भी तुम्हारी हो जब तुम मंदिर को जाओगे तुम स्वस्थ और नवीन हो जाओगे. तुम खुशी महसूस करोगे. तुम वह आशीर्वाद महसूस करोगे जो मैं आज बयान नहीं कर सकती. मेरे पास 6 बच्चे थे जो जनवरी 12 को गुजर गए थे. मुझे याद है जब भूकंप आया था मैं कपड़े धो रही थी और बच्चे बाहर दरवाजे के पास बैठे थे. हमारे बगल का घर जो ऊंचाई पर था गिरा. जब वो गिरा वो बच्चों पर गिरा. जब मैं मंदिर में पहली बार गई आई थी मैंने आत्मा की शक्ति को बहुत महसूस किया था और मैं जान गई थी कि मैं प्रभु के घर में थी. मैंने अच्छा महसूस किया था. मेरे बच्चों के बिछड़ जाने के बाद ही मुझे खराब नहीं महसूस था. मैं ठीक थी. मुझे पता था कि मुझे अंत तक के लिए धरती पर कुछ दिन रहना है परंतु एक दिन मैं अपने अंत परिवार के साथ रहूंगी. मुझे वो विश्वास है. हमें मंदिर में जाने के बाद हमारे जीवन में कई आशीर्वाद प्राप्त होते रहेंगे. तब मंदिर को जाना भी कभी भी बंद मत करो.
Did you love that as much as I did? Could you feel the blessings of the temple just circling the earth, the sisterhood in that video? I loved it. Well, sisters, tonight I would like to consider.
आज रात मैं उन दो जरूरी जिम्मेदारियों के विषय में बात करूंगी जो हमारे पास है. पहला हमारे जीवन में हमेशा सुसमाचार के ज्ञान को भरना और दूसरा उस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना. बहनों क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी जरूरी हो. तुम सब अभी भी स्वर्ग पिता के मुक्ति की योजना में कीमती और खास हो. तुम्हारे पास काम है करने को. हम पुनर्स्थापित समाचार के सच्चाई को जानते हैं. क्या हम उस सच्चाई को रक्षा करने के लिए तैयार है. हमें उसी में जीना है. हमें उसे बांटना है. हमें अपने विश्वास में अटल रहना चाहिए और अपने आवाज को सच्चे सिद्धांत के लिए प्रकट करना चाहिए. सितंबर 2014 के एंजाइन में एल्डर रसल बेलेड ने लिखा, हमें महिलाओं की खास प्रभाव और विश्वास की जरूरत है। हमें जरूरी है कि वे सिद्धांतों को सीखें और समझें और जो हम विश्वास करते हैं, ताकि वे सब बातों की सच्चाई को अपने गवाही में बयान करें। बहनों, तुम मेरे विश्वास को यीशु मसीह में मजबूत करती हो। मैंने तुम्हारे उदाहरण को देखा है, तुम्हारे गवाही को सुना है, और दुनिया भर ब्राजील से बोत्सवाना तक के महिलाओं की विश्वास को महसूस किया है। तुम्हारे पास क्षमता है तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को प्रभावित करने का जाना भी, तुम जहाँ भी तुम जाओ, ये तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों ने महसूस किया है। तुम्हारे परिवार से लेकर तुम्हारे सेलफोन के लोगों तक और तुम्हारे दोस्तों से समझने मायक तक से लेकर आज रात तुम्हारे साथ बैठे तक। मैं बहन हैरियट उगदोफ के साथ संतुष्ट हूँ जिसने कहा, तुम इस बुराई से उभरते दुनिया में शक्ति और उसकी उदाहरण हो जो तुम दिखलाते हो। जिस तरह से तुम अपने जीवन को बताते हो कि सुसमाचार का संदेश खुशी से भरा है, किस तरह मैंने अपने सच्चाई के ज्ञान को पूरी तरह बढ़ा और बांट सकती हूँ। सुसमाचार सिखलाता है कि जो परमेश्वर से आता है वही रोशनी है, और जो रोशनी को प्राप्त करता है और परमेश्वर के साथ हो जाता है और जायद रोशनी को प्राप्त करते हैं। हमें परमेश्वर के पीछे हमेशा चलना चाहिए, जैसे सुसमाचार में लिखा है, हमें रोशनी के जड़ तक जाना चाहिए। मंदिर के द्वारा उसके इर्द गिर्द पर बड़े प्रभाव को सोचो। वे शेरोन के सुंदर करती है, वे महान पहाड़ पर चमकती है। वे क्यों सुंदरता प्रदान करती और चमकती है? क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि सच्चाई चमकता है, और मंदिर में सच्चाई और अनंत कार्य होते हैं। तुम भी करते हो। 1877 में प्रधान कैनन ने कहा, सभी मंदिर धरती पर शैतान की शक्ति को कम कर देता है। मैं विश्वास करती हूँ कि जहाँ कभी भी धरती पर मंदिर बनता है, वहाँ बुराई को मिटा देता है। मंदिर का कार्य है कि इंसान की सेवा करे और स्वर्ग के पिता की सभी बच्चों को उसके पास वापस लौटने और जीने की क्षमता दे। क्या हमारे कार्य भी इन समर्पित इमारतों की तरह नहीं है? मंदिर के पवित्र कार्य मसीह में हमारे विश्वास को और ज्यादा बढ़ा सकता है, और फिर हम दूसरों के विश्वास को अच्छी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। मंदिर के पोषण करते आत्मा द्वारा हम सच्चाई, शक्ति और अपने जीवन में उद्धारकर्ता के प्रशिक्षित की आश को सीख सकते हैं। कई साल पहले हमारे परिवार ने एक गंभीर चुनौती को झेला था। मैं मंदिर गई और विश्वास से के साथ मदद के लिए प्रार्थना किया। मुझे सच्चाई की क्षण प्राप्त हुआ। मुझे साफ तौर पर अपनी कमी दिखलाई दिया और मैं आश्चर्य में पड़ गई। उस धार्मिक सीखने वाले क्षण में मैंने अपने आप को खुद ही के तरीके से कार्य को करते हुए देखा, प्रभु की तरीके से अलग, और कार्य के लिए खुद की प्रशंसा करी। मैं जान गई थी मैं अपने आप को देख रही थी। मैंने अपने हृदय में स्वर्ग के पिता से प्रार्थना किया, कहा, मैं वो महिला नहीं होना चाहती, पर मैं किस तरह बदल सकती हूँ। मंदिर में सच्चे मुक्ति के आत्मा द्वारा मुझे खुद के लिए मुक्तिदाता की बहुत जरूरत थी। मैं तुरंत ही उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर मुड़ और अपने घमंड को पिघलते हुए देखा, और अपने हृदय में एक महान आशा को भरते हुए। वह ही सिर्फ मेरे एक आशा थी, और मैं सिर्फ उसके पीछे चली। ये मेरे लिए साफ हो गया था कि एक महिला जो सिर्फ अपने बारे में सोचती स्वाभाविक महिला परमेश्वर की श्रुति होती है, और अपने प्रभाव डालने वाले लोगों को भी। उस दिन मंदिर में मैंने सीखा कि सिर्फ यीशु मसीह के प्रशिक्षित के द्वारा मेरी घमंड का बर्ताव बदल सकता है। मंदिर में मैं तकलीफ के साथ गई थी और बाहर निकलते ये जानते कि मेरे पास एक बहुत पूरे शक्तिशाली उद्धारकर्ता है। मेरी तकलीफ कम हुई और खुशी प्राप्त हुई क्योंकि मैंने अपने लिए उसके रोशनी को प्राप्त किया था और उसके योगना स्वीकार किया था। दुनिया भर के मंदिरों के बाहर वे अपने अलग अलग ढंग और बनावट के हैं, परंतु अंदर वे सब एक ही समान अमानत रोशनी महत्व और सच्चाई की है। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 16 में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम भी परमेश्वर की पुत्रियां तरह दुनिया भर में पाए जाते हैं और हम सबके पास खुद ही अपनी ढंग और आभारी सजावट है। धरती पर हम सबके पास अपने खुद के कार्य है करने को, पुत्री, माँ, नेता और बहन के लिए, शिष्य, पैसे कमाने वाले, पत्नी और भी ज्यादा से। हर एक शक्तिशाली है, हर कार्य के पास मरणशील शक्ति है। जब हम अपने जीवन के सुसमाचार के सच्चाइयों और मंदिर के वादों को दिखलाते हैं। एल्डर क्रिस्टोफर्सन ने कहा, सभी कार्य में एक माँ जैसी प्रभावशाली कोई और नहीं हो सकती किसी भी नाते में। जब हमारे बच्चे जवान थे, मैं अपने पति डेविड एक जहाज के सहयोगी की तरह महसूस कर रही थी और अपने 11 बच्चे के छोटे दल के नाव को इर्द गिर्द बंदरगाह पर तरते हुए दुनिया के समुद्र में निकलने की तैयारी में। डेविड और मैं प्रभु के प्रेरणा को हर समय प्राप्त करने की जरूरत को महसूस किया था अपने बच्चों के साथ सबसे अच्छे मार्ग पर जाने के लिए। मेरे बीते हुए दिन में कई बार जाने वाले चीज थे, जैसे कपड़ों को ढोना, बच्चों की किताब को पढ़ना और खाना पकाने वाले चीजों को रात के भोज के लिए साथ रखना। कभी कभी हमारे घर के बंदरगाह में हम ये सरल से नहीं देख पाते हैं कि हमेशा क्या कार्य जिस परिवार प्रार्थना, धर्मशास्त्र को पढ़ाना और परिवार घरेलू सभा सम्मेलन है, महान कार्य होती है। परंतु मैं गवाही देती हूँ कि ये महान कार्य के पास अनंत महत्व है। हमारे विश्वास और सेवा के छोटे से कार्य से हम सब परमेश्वर के साथ हमेशा रह सकते हैं और हमेशा अपने परिवार, हमारे दोस्तों और संगतों के साथ अनंत रोशनी और महिमा को बांट सकते हैं। उस प्रभाव के विषय में सोचो जो एक प्राथमिक उम्र लड़की के विश्वास से उनके परिवार पर हो सकता है। हमारे पुत्री के विश्वास ने हमारे परिवार को आशीर्वाद दिया था जब हमने अपने जवान पुत्र को खेलने वाले पार्क में खो दिया था। परिवार तुरंत ही उसे इर्द गिर्द ढूंढने लगा। अंत में हमारी 9 साल उम्र की पुत्री ने मेरे हाथों को खींचा और कहा, माँ, क्या हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए? वो सही थी। परिवार भी के बीच में इकट्ठा हुए और हमारे बच्चों का पता लगाना के लिए प्रार्थना को किया। हमने उसे पा लिया। सभी प्राथमिक लड़कियों से मैं कहती हूँ कि कृपा अपने माता पिता को प्रार्थना करने की याद दिलाओ। बड़ा कमरा आत्मा से भर गया था और मैं साथ कहने को तड़प रही थी, परंतु मैं नहीं कर सकी। मैंने उसे अच्छी तरह से याद नहीं किया था। मैंने जीवित मसीह के वाणी को सीखना शुरुआत किया था जैसे बहन ने किया था, और क्योंकि उनके प्रभाव के कारण मैंने और भी अच्छी तरह से प्रभु भोज के वादे को अनुभव किया था। सभी समय उद्धारकर्ता को याद करने का, जबकि मैंने देवदूत के मसीह की गवाही को बार बार दोहराए। मेरे आशा है कि मैं उद्धारकर्ता को बड़ा दिन के उपहार में इस साल जीवित मसीह को याद करके प्रदान करूं और दिसंबर 25 तक संजो सकूं। کیا تم اپنے آپ سے اس واقعے کو دوہرا سکتے ہو؟ جیوت مسیح اس نے سبھی کو اپنے ادھارن پر چلنے کو کہا. اس نے پیلسٹائن کے راستوں پر بیماروں کو دیکھ کیا, اندھوں کو دیکھنا کی شکتی اور مرے ہوئے کو جیوت کیا. ہم گرجا گھر کی بہنیں پیلسٹائن کے راستوں پر بیماروں کو دیکھ نہیں کرتے پرنتو ہم بیماروں کے لیے پرارتھنا کر سکتے ہیں. بھلے ہی ہم ادھارکرتا کی طرح اندھوں کو دیکھ ہی روشنی نہیں پردان کر سکتے ہیں, ہم دھارمک آنکھوں کو مکتی کی یوجنا کے گواہی کو بیان کر سکتے ہیں. ہم ان کے سمجھ کی آنکھوں کو آنند وادوں کے لیے پروہت کے ضرورتوں کے کھول سکتی ہے. ہم ادھارکرتا کی طرح مرے ہوئے کو جیوت نہیں کریں گے, پرنتو ہم مرے ہوئے کے نام کو مندر کے کاریہ کے لیے ڈھونڈ کر آشیرواد دے سکتے ہیں. میں گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے یشو مسیح جیوت ادھارکرتا ہے, اور ان کے شکتی اور گیان سے ہم دنیا کے برائی کو چھوڑ سکتے ہیں. سچائی کو ہم جانتے ہیں کو بتلائے اور دوسروں کو اس کے پیچھے چلے. یشو مسیح کے نام سے آمین. بہن, ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں ہمارے ساتھ اس شام کو گزارنے کے لیے. ہم آپ سے پریم کرتے ہیں. ہم یہاں سمیلن کیندرا اور کوریا کے پراتھمک بچوں کو گائک منڈلی کو دھنیواد دیتے ہیں سندر سنگیت کے لیے جس نے ہمیں آنند پراپت ہوئی. ہم اسی طرح انہیں دھنیواد دیتے ہیں جنہوں نے ہم سے باتیں کی ہے, اور سبھی کی باری ہے جنہوں نے اس سبھا کی تیاری میں کسی بھی پرکار کی سہیوگ دیا ہے. گائک منڈلی اور سنگتن ساتھ مل کر آئی ایم اے چائلڈ آف گاڈ کے پہلے اور تیسرے ویسوں کو گائیں گے. بہن پائک ٹول کے نردیشن میں گائک منڈلا دوارا چوتھا ویس کو گایا جائے گا. سنگیت کے بعد پردھان ڈیوڈ ایف اگڈو کو سننے کا اوسر پراپت ہوگا, جو پرتھم ادھیکشکتا کے دوسرے سلاحکار ہے. پردھان اگڈو کے تپینیوں کے بعد گائک منڈلی سبھا کو لیٹ زائن ان ہر بیوٹی رائز کو گا کر ختم کرے گی. اس کے بعد ایمی کرلن وائٹ دوارا سماپتی پرارتھنا دی جائے گی. لوگن جوان یوٹا جوان ابھیوک بزرگ فورتھ اسٹیٹ کے ایک سہایک سنستھا کی بہن ہے.
Thank you, sisters, for these powerful and inspiring messages. Thank you for this beautiful choir here.
Dhanyabad dete hain choir ko is conference center mein aur choir Korea ke bachchon ko. Join their voices, bless
us. My beloved sisters,
mere pyare bhaiyo, I'm honored to have this opportunity to be with you. Mujhe garv hai aapke saath ek aur Yeshu Masih ka girja antim dinon ke santon ka mahasammelan ka shuruaat kare. Aane wale saptah mein pratham adhyaksha aur bharat devdut sabhi maha adhikari aur maha parishad netaon se milenge. Mere main habari hu हमारे भविष्यवक्त प्रधान मानसन के लिए कि उन्होंने मुझे प्रथम अध्यक्षता से चुना चुने गिरजाघर के बहनों से बातें करने के लिए जब मैं सोच रहा था कि क्या कहूं मुझे याद आई वो महिलाएं जिन्होंने मेरे जीवन पर प्रभाव डाला है और मुझे मरणशीलता के चुनौतियों में मदद किया है मैं आभारी हूं अपने आज के लिए जिन्होंने सालों पहले अपने परिवार को मोमन प्रभु भोज सभा में ले जाने के मैं आभारी हूं बहन ईव के लिए जो एक अकेली जर्मन महिला था जो बहन आनंद के नाम से अंग्रेजी अनुवाद आता है मैं अपने माँ के लिए आभारी हूँ जिसने चार बच्चों को विश्व युद्ध के मुसीबतों में संभाला था मैं अपने बेटी नतियों पोतियों और भविष्य के पीढ़ी के विश्वासी महिलाओं को भी याद करता हूँ जो जिसमें शामिल होंगे और हाँ मैं आनंद तक आभारी रहूँगा अपनी पत्नी हैरियत के लिए जो मुझे युवा उम्र में भाग गया थी जिसके एक माता होने के कई बोझ उठाई जो आज मेरी पत्नी है और मेरी बच्चों नाती पोतों और परमतनती नाती पोतों से प्रेम करती है वो हमारे घर की ताकत रही है अच्छे और बुरे समय में वो हम सभी के जीवन में खुशी लाती है जो उसे जानते हैं अंत में मैं आप सब के लिए आभारी हूँ वो क्यों बिलियन विश्वभर की विवाहित बहनें जो परमेश्वर के राज्य को बनाने में सहयोग देता है मैं आभारी हूँ आपके लिए आपने कई तरीकों से अपने आसपास को लोगों को प्रेरित पोषण और आशीर्वाद देने के लिए मैं आभारी हूँ परमेश्वर के इतने सारे पुत्रियों के साथ होने के लिए जब हम वो आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड गीत गाते हैं उसके शब्द मेरे हृदय को छू लेते हैं इस सच्चाई के बारे में सोचने से कि हम स्वर्ग के माता पिता के बच्चे हैं हमें बतलाता है कि हमारा वजूद वर्तमान और भविष्य है हमेशा याद रखना कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो है अच्छी बात है यह ज्ञान तुम्हें अपने जीवन के सबसे कठिन समय से निकालेंगे और तुम्हें अच्छे काम करने के प्रेरणा देंगे हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि आनंद माता पिता की पुत्री होना एक ऊंचाई की बात नहीं जो तुम्हें कमाया या है तुम खोदोगे तुम सदियों और हमेशा परमेश्वर की एक पुत्री होगा तुम्हारे स्वर्ग के पिता के ऊंचे आरमान है तुमसे मगर तुम्हारा दिव्य वजूद अकेले ही तुम्हारे दिव्य विरासत को नहीं दे सकता परमेश्वर ने तुम्हें यहाँ एक बढ़िया भविष्य की तैयारी करने के लिए भेजा है जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती विश्वासियों के लिए परमेश्वर के वादा किए आशीर्वाद शानदार और प्रेरणा भरे है उन्होंने राजगढ़ियों राज्यों और शक्तियों क्षेत्रों सभी ऊंचाइयों और गहराइयों और इसके लिए आत्मिक जन्म पत्र या परमेश्वर का पुत्र सदस्य कार्ड नहीं चाहिए कि अनुमान से बाहर के आशीर्वादों को पाने के लिए हम कैसे इस आशीर्वादों को पा सकते हैं उदारकर्ता ने सवाल का जवाब हमारे समय में दिया है उसके कहा जब तक उनके कानून का मानेंगे हमें यह महिमा नहीं मिलेगी क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन का पहुंचाता है इसलिए तू हमारे कानून स्वीकार करे इस कारण से हम चलापन के मार्ग चलने की बात करते हैं हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने के बारे में कहते हैं हम सुसमाचार की खुशी से अपने पूरे हृदय शक्ति और आत्मा से जीने के लिए कहते हैं परमेश्वर ऐसा कुछ जानता है जो हम नहीं जानते और फिर भी हमें से कुछ लोगों के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हमेशा खुशी नहीं लाता आओ हम ये मान लें ऐसा आज्ञा जो हम उस बच्चे की जोश की तरह लेते हैं जबकि वो स्वस्थ सब्जियों के ताली के सामने होता है शायद ऐसे समय पर हम अपने आप को ये पूछते पाएंगे क्या हमें सच में परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को पालन करना है इस सवाल पर मेरा जवाब सरल है मुझे लगता है परमेश्वर कुछ जानते हैं जो हमें नहीं जानते जो चीजें हमारे समझ का बाहर है हमारे स्वर्ग के पिता के आनंद जीव है जिसका अनुभव बुद्धि और समझ हमसे बहुत ज्यादा बड़ा है सिर्फ ये नहीं मगर वो आनंद रूप से प्रेमी दयालु और एक ही लक्ष्य पर निर्भर है हमारा अमरणशीलता और आनंद जीवन दिलाने की अन्य शब्दों में वो न सिर्फ जानता है कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है वो यह चाहता है कि तुम वो चुनो जो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम अपने दिल में यह विश्वास रखते हो अगर तुम स्वर्ग के पिता के महान लक्ष्य उनके बच्चों को आनंद जीवन देना और कि वो कोई वही जानता है कि ये ऐसा कैसा हो क्या ये ठीक नहीं कि उनके आज्ञाओं को अपनाया जाए और किया जाए मैं विश्वास करते हो वो सब भी जो कठिन दिखलते हैं क्या हमें मार्गदर्शन वाले कंबों से प्रेम नहीं करना चाहिए जो उसने हमें अंधेरी और मुसीबत से भरी मार्ग से निकलने के लिए दिया है वो स्वर्ग के घर तक रास्ता बतलाती है स्वर्ग का पिता का मार्ग चुनने से तुम एक दिव्य बुनियाद बनाते हो अपने निजी प्रगति के लिए परमेश्वर की एक पुत्री होकर जिसे तुम्हारे जीवन में आशा आशीष आए मुझे लगता है हमारा एक चुनौती यह है कि हम सोचते रहते हैं कि परमेश्वर ने अपने सभी आशीर्वादों को स्वर्ग में बड़े बादल में बंद कर रखा है किसी की देना नहीं चाहता जब तक उनके शर्त नहीं मान लिया गया वास्तव में स्वर्ग के पिता हर वक्त हम पर आशीर्वादों को वर्षा करता रहा है ये हमारा डर संदेह और पाप है जो कि एक चाहता की तरह इस आशीर्वादों को हम तक नहीं पहुंचाने देता है उनके आज्ञा प्रेम भर सलाह और दिव्य मदद है इस चाहते को बंद करने के लिए ताकि हम स्वर्ग के आशीर्वादों की वर्षा को लगातार पा सकें हम जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं सिर्फ अच्छे सुझाव की लंबी पर्ची की तरह नहीं स्वीकार करें वो इंटरनेट में से निकाले गए अलग बढ़िया तरीके के पिंटरेस्ट बोर्ड के प्रेरणादायक दोहरा नहीं वो दिव्य सलाह है आनंद सच्चाइयों पर आधारित नहीं है इस दुनिया में शांति और आने वाले दुनिया में आनंद जीवंत लाने के लिए दिया गया है हमें चुनाव कर सकते हैं एक तरफ दुनिया का नजरिया है जहां सब कुछ बदलता रहता है और हर मौत पर सवाल मिलते हैं दूसरी तरफ वहां परमेश्वर के शब्द है उनके बच्चों के लिए उनका आनंद ज्ञान उनके कुछ वादे और उनके प्रेम भरे आदेश ताकि हम उनके उपस्थिति में जा सके महिमा प्रेम और गौरव के साथ समुद्र अब चुनाव का आपका है, चुनाव आपका है. समुद्र बलाओं और शैक्तों सितारों का रखने वाले आज भी तुम्हें पुकार रहा है. वो खुशी, शांति और आनंद जीवन का बढ़िया तरीका बतलाता रहा है. इन बढ़िया आशीर्वादों के काबिल होने के लिए तुम्हें विनम्र होना है, विश्वास करना है, मसीह का नाम अपने ऊपर लेना है, आप उन्हें शब्द और कर्म में ढूंढना है और निर्णय कर लेना है कि तुम परमेश्वर के गवाह के रूप में खड़े होगे सभी समय और सभी चीज़ों में और सभी जगहों पर. आज्ञाकारी क्यों होना चाहिए? एक बार तुम परमेश्वर के सच्ची प्रकृति और उनके आज्ञा को समझो, तब तुम बेहतर ढंग से खुद को समझ पाओगे और अपने जीने के दिव्य लक्ष्य को भी. इसके लिए तुम्हारे आज्ञाओं का पालन करना का जोश बदल सकता है और तब तुम्हारे हृदय की इच्छा जो जाता है. उदाहरण के तरह ओ जो गिरजाघर शब्दों की उपस्थिति इसे परमेश्वर के प्रति अपने खुद पर के प्रेम को बढ़ते देखना चाहते हैं, शांति पाना चाहते, दूसरों की सहायता आत्मा को पाना और यीशु मसीह के चेला बनना चाहता है. उन्होंने अनुभव बहुत लाभदायक लगेगा. बहनों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रविवार शब्दों में जाएं, पर मुझे यकीन है कि हमारे स्वर्ग के पिता लिए विश्वास और प्रस्तुता बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि हमारी उपस्थिति की संख्या. दो बच्चों की एक अकेली माँ ने माता को गया था हो गया था. ऐसा हुआ कि उसके बच्चे भी बीमार हो गया. अपने और अपने बच्चों का अकेले ख्याल करना बहुत ज्यादा पड़ गया था उसके लिए, और इसके कारण पहले का साफ सुथरा घर जो अब जमेला बन गया था. महले बर्तन गंज गए थे और कपड़े भी जमा हो चुके थे. जब वो रोते बच्चों को चुप कर रही थी और खुद रोने वाली थी, दरवाजे पर एक खटखट आई. वो था उसके भेंट करने वाले शिक्षक. वो इस जीवन माँ की मुश्किल को देख रही थी. उसका घर रसोई सब देख रहा था. उन्होंने बच्चों की रुलाई भी सुनने दे रही थी. अब अगर ये बहनों सिर्फ अपने सौंपे गए महीने को बेंड करना चाहते थे, तो वो माँ को एक प्लेट कुकीज देते, कहते कि उन्होंने उसे सहायक संस्था में नहीं देखता था, और ऐसा कहते हमें बतलाना अगर हमारी जरूरत पड़े. फिर वो गए घर होते, ये चूंकि कि उनका 100% प्रसाद का हुआ इस महीने. सौभाग्य से ये बहनें मसीह के सच्चे चेले थे. उन्होंने अपनी बहन की ज़रूरतों को देखा और अपने गुनाहों और अनुभवों से काम करने लगी. उन्होंने सब कुछ साफ किया, घर में रोशनी और शांति लाया और एक दोस्त से कहा कि कुछ भोजन को सामान ले आए. जब वे काम करके जा रहे थे, वो जवान माँ रोने लगी. कृतज्ञता और प्रेम के आंसू उस चैन से उस जवान माँ के बहन शिक्षण के राही बदल गए. उसने कहा, मैं जानता हूँ कि लोग मुझे इसलिए नहीं बहन करने आते हैं क्योंकि उन्होंने बतलाया गया है. हाँ, भेंट शिक्षाओं को लगातार अपने हर महीने के भेंट करनी चाहिए बगैर इस आज्ञा के पीछे के सबसे जरूरी क्यों को जाने कि परमेश्वर और सभी लोगों से प्रेम रखें. जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को और उनके राज्य को बढ़ने को एक जिम्मेदारी को रखने करने की सूची की तरह है समझते हैं, हम चेलापन को अच्छी तरह नहीं समझते थे. हम इस बढ़ती से चेलापन की मगर पर चलना हमें बुरा नहीं लगना चाहिए. यह कोई बोझ नहीं हमारे लिए भारी पड़े. चलपन हमारे आत्माओं को उजावल करता है, हमारे हृदय को हल्का करता है. वो हमें विश्वास, आशा और दयालुता से प्रेरित करता है. वो हमारे आत्माओं को अंधेरे से समय रोशनी बढ़ता है. वो हमें दिव्य शक्ति और आनंद खुशी देता है. सुसमाचार की मेरी प्यारे बहनों, चाहे तुम 8 की हो या 108 की, एक बात है जो मैं आशा करता हूँ तुम सब सच में समझ और जानोगे. तुम्हें प्रेम मिलता है. तुम्हें अपने स्वर्ग के माता पिता के लिए प्यारे हो. रोशनी और जीवन का अपारमित और आनंद रखने वाले तुम्हें जानता है. वो तुम्हारा ख्याल रखता है. हाँ, परमेश्वर तुम्हें आज भी प्रेम करता है और हमेशा करता रहेगा. वो ये नहीं इंतजार करता है कि जब तुम कमजोर नहीं होगे और बुरे आदतों को छोड़ दोगे तब तुमसे प्रेम करेंगे. वो तुमसे आज प्रेम करता है. तुम्हारे सारे संघर्षों को जानता है. वो जानता है कि तुमसे दिल से और आशा से प्रार्थना करते हो. वो जानता है उस समय के बारे में जब तुम्हें हल्की सी रोशनी का सहारा लिए विश्वास किया. भले इस अंधेरा बढ़ता रहा, वो तुम्हारे तकलीफों को जानता है. वो जानता है तुम्हारे दुख को जब तुमसे गलती हुई या तुम हार चुके थे, और वो भी तुमसे प्रेम करता है. परमेश्वर तुम्हारे सफलताओं को जानता है. भले ही वो तुम्हारे लिए चाहते हैं छोटे हैं, वो हर एक को पसंद करता है और सर्वता है. वो तुम्हारे सेवा के लिए प्रेम करता है और तुम्हें प्रेम करता है दूसरे की मदद करने के लिए, भले ही तुम अपने बोझ से दबे होते हैं. वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है. वो तुम्हें साफ रूप से देख सकता है जिस तरह से तुम वास्तव में हो, और वो तुमसे प्रेम करता है आज और हमेशा के लिए. क्या तुम छोटे सोचते हो कि ईश्वर के पिता परवाह करते हैं तुम्हारे सजावट, कपड़े, बाल और नाखाओं के बारे में? क्या तुम सोचते हो इंस्टाग्राम और पिंट्रेस्ट पर तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं से उनके नज़र में तुम्हारा दर्जा ऊंचा हो जाता है? क्या तुम सोचते हो चाहेगा कि तुम चिंता करो या दुखित हो जाओ अगर कोई तुम्हें अनफ्रेंड या अनफॉलो करे फेसबुक या ट्विटर पर? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा उपहारी दिखावा, तुम्हारे कपड़ों की नाप या लोकप्रियता से उन्हें जिसने सृष्टि बनाई को तुम्हारे योग्यता में अंतर दिखाता है? उनका प्रेम सिर्फ आज तुमको हो से नहा जुदा है, मगर उस इंसान के प्रति जो तुम्हारे अंदर है, जो कुछ बन सकती है आगे चलकर, से जुदा है, जिसके तुम कल्पना नहीं कर सकते. वो चाहता है कि तुम अपने लक्ष्य का तक पहुँचाओ, कि तुम स्वर्ग के घर को आदर सम्मान से पहुँचो. मैं गवाही देता हूँ कि ऐसा करने के लिए स्वर्ग प्रता और आज्ञियों लक्ष्यों को बलिदान और सेवा के वेदी पर रखो. बहनों, यीशु मसीह के बचाने वाले शक्ति पर भरोसा करो. उनके कानून और आज्ञा का पालन करो. अन्य शब्दों में, खुशी से सुसमाचार को जियो. ये मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने जीवन में परमेश्वर के सुंदर प्रेम के बढ़ंति और उपस्थिति को अनुभव करो, कि तुम्हें परमेश्वर के आज्ञाओं को सीखने में विश्वास, पक्का इरादा लगाओ और सुसमाचार में खुशी मिले. मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम ऐसा करोगे, तुम अपने बेहतर आप सही अस्तित्व को देखोगे. तुम जाओगे कि आनंद परमेश्वर सभी सच्चाई का प्रभु की पुत्री होने का क्या मतलब है. इसकी मैं गवाही देता हूँ और प्रभु के देवदूत होना के अपना आशीर्वाद छोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन.
Dear Heavenly Father,
हमारे पिता परमेश्वर, हम आज आपके आते हैं इस प्रोग्राम के अंत में हृदय भर के हम आप धन्यवाद देते हैं कि हम सब बहन इकट्ठे हुए हैं और आज संदेश को सुन सके. हम आभारी हैं अपने लीडर्स के लिए और उनके प्रेम के लिए. हम ये मांगते हैं परमेश्वर कि हम जैसे टेंपल जा सके, हम आशीर्वाद देते हैं जितने आशीष हमें मिले हैं. हम धन्यवाद देते हैं अपने भविष्यवक्ता प्रेजेंट मॉनसन के लिए. आशीष दीजिए जैसे हम अपने आप को तैयार कर सके जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए. हम प्रेम करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन.